चलें देखते हैं तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछली आयात में एक चैलेंज के बारे में बात की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही। अगर तुम्हें इसमें शक है तो कोई सूरत बना के ले आओ और तुम अपने मददगारों को भी ले आओ। अगर तुम इतने ही सच्चे हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कलाम है तो फिर तुम भी ले आओ। अगर तुम समझते हो ना इंसानी कलाम है तो वो तो अकेले है ना, तुम अपने साथ और जितने को भी मिलाना चाहो मिला लो और उनकी मदद के साथ तुम कोई ऐसा ही कलाम, पूरा ना सही, एक सूरा की मिसल ही बना के ले आओ। तो अब उनसे तो बनाया नहीं जा सकता था, तो अब उन्होंने क्या किया, जब इंसान को कोई चीज का मुकाबला नहीं हो रहा उससे तो वो क्या करता है, फिर उसके ऊपर एतराज करने लगता है, फिर उसके अंदर से शोशे निकालने लगता है, नहीं जी इसमें तो ये चीज सही नहीं है, ये तो ऐसे है। यही काम उन लोगों ने किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें मिसालें दे दे के चीजें समझाई, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान की कितनी सोच समझ अकल कितनी है। तो आपको पता है मिसाल दे के क्या होता है, चीज समझनी आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मक्खी से भी मिसालें दी हैं, मकड़ी की मिसालें दी हैं, शहद की मक्खी की मिसालें दी हैं। फिर इसी तरह आप देखें जन्नत की चीजों की मिसाल दुनिया की चीजों से दी हुई है। अब जन्नत की चीजें दुनिया की चीजों जैसी तो नहीं है, लेकिन अब जब अनार की बात आई, केले की बात आई, तो आप देखते हैं कि वो तो ये यहाँ के फल हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि इंसान किसी चीज को समझ सके। तो जब अल्लाह ताला ने इस तरह से मिसालें दी तो उन्होंने फौरन इतराज करने शुरू कर दी, लो ये क्या बात हुई, ये क्या हुआ, ये अल्लाह का कलाम है और इतनी छोटी छोटी हकीर चीजों की मिसालें दी जा रही, ये हम पढ़ने लगे आप, ठीक है। इन अल्लाह ला यस्तहयी, बेशक अल्लाह ताला नहीं हया फरमाता, अन यद्रिब मसलन, कि वो बयान करे कोई मिसाल। ये अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज का जवाब दिया है कि तुम ये कह रहे हो कि क्यों अल्लाह ने ऐसी मिसालें दी, तो अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं है मिसालें देने में, कि चाहे बाउदा की हो फमा फौका है या उससे ऊपर की हो, अल्लाह ताला को शर्म नहीं है। देखिए इसका मतलब है कि हया यहां पे कहा गया, अल्लाह ताला इससे हया नहीं करता, इसे नहीं झिझकता, इसे नहीं शर्माता। इसका मतलब है क्या अल्लाह ताला किसी और चीज में हया करता है? जी हाँ, अल्लाह ताला बहुत हया वाला है, और हदीस में भी आता है अल्लाह ताला बहुत हया वाला और बहुत करीम है। उसको हया आती है जब उसका बंदा उसके आगे हाथ उठाता है कि कैसे उसको खाली हाथ लौटाए, ये हदीस में बाकायदा आता है। इसका मतलब अल्लाह ताला को हया आती है कई चीजों से, और हया बड़ी अच्छी चीज है, मगर जहां पे हक बात कहनी हो ना वहां पे इंसान हया शुरू कर दे। मसलन आप कोई बुरा काम देख रहे हैं अपने सामने, मुझे तो शर्म आ गई, मैं किस तरह से कहूं, वो शर्म नहीं है, वो हया नहीं है, वो बुजदिली है, ठीक है। तो हक बात कहने में हया नहीं करनी, या हक बात कहने में उस वक्त हम शर्माना शुरू हो जाते हैं जहां पे शर्म का टाइम होता है, जहां पे हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म से वो नहीं है कि शाये होना, कि जैसे तो कोई बच्चा किसी के सामने बोल नहीं सकता, जो बड़ा शर्मीला है, वो वाली बात नहीं, हया डिफरेंट चीज है। तो जहां पे हया होनी चाहिए कि किसी साथ बदकलामी करें, किसी को बुरा भला कहें, किसी के ऊपर कोई बात कर दें, इसमें हया आनी चाहिए, किसी को तड़ से जवाब दे दें, नॉन कर्टियस रवैये इख्तियार करें, इनमें हया होनी चाहिए कि इंसान हया करे और ना बोले इस तरह की बात, लेकिन उनमें हमें हया नहीं आती। लेकिन जब हम हक को देखें और फिर खामोश रहें तो फिर इसके अंदर हम कहते हैं हमें बड़ी हया आती है, क्या करें, इसलिए नहीं हम बोल सके। तो ये मौका नहीं होता हया का। तो कोई मौका होता है जिसके अंदर हया अच्छी बात है, लेकिन कोई मौका जहां पे हक कहना है वहां पे हया नहीं करना, यहाँ पे शर्माते ही रहे बोलने, सारा वक्त आपके सामने कुछ बुरा होता रहे और आप शर्मा रहे, हम क्या करें, हम क्या कहें, नहीं हमारी कौन सी किसी ने सुननी है, ये बात कोई एक्सक्यूज नहीं, हमारी कौन सी किसी ने सुननी, आप बोलें तो सही ताकि अल्लाह के हाँ तो आपकी तरफ से एक हुज्जत कायम हो जाए कि इसने तो बोला था, इसने तो कहा था। वहां पे हया करना बुराई है, वहां पे हया करना बुजदिली है, ठीक है। तो अल्लाह ताला नहीं हया करता कि वो मिसाल बयान करे किसी मच्छर की, ठीक है। क्यों ये क्यों कहा गया कि किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे ऊपर की किसी चीज की बयान करे? इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा है हमें समझाने के लिए बातें, उसने अपने इल्म के उसके ऊपर नहीं, यानी अपने इल्म के मुताबिक से बातें नहीं की हैं, बल्कि हमारे लेवल पे बात की है। और हमें बातें किस तरह समझ आती हैं? मिसालों से। मसलन आपने किसी बच्चे को बात समझानी है तो आप बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करना शुरू कर देते, आप उस बच्चे के लेवल पे बात करते कि इसको समझ आ जाए। इस तरह बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, वो कितने बड़े नॉलेज वाले स्कॉलर्स होते हैं। अब कोई स्पीकर अच्छा तब समझा जाता है जबकि वो अपने ऑडियंस के लेवल पे आके बात करें, ऐसा नहीं कि वो अपने इल्म के मुताबिक बड़ी बड़ी बातें करता रहे, उनके सर पे से ही गुजर जाए बात, उनको समझ ही ना आई बेचारों को क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो ये कोट कर रहा है, वो उसको बस ये है कि मैं अपनी धाक बिठाऊं। तो अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपने ऑडियंस के लेवल पे जाके उनकी समझ के मुताबिक बात करे कि इनको मेरी बात समझ आ जाए, चाहे उसमें मिसालें देनी पड़े, चाहे उसमें किस तरह से करना पड़े, वो उसको इस तरह से करके बयान करता है, उसको कहा जाता है अच्छा स्पीकर, ठीक है। और बाज देखें, आप लोग भी देखते होंगे, बाज इतना मुश्किल बोलते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आते, और उठ के गए तो क्या समझा, कुछ भी नहीं समझ आया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा है किस लिए? ताकि इंसानों को हिदायत दे, इंसानों को रास्ता बताए। अल्लाह ने ये नहीं हमें दिखाना कि मेरा इल्म कितना है, मैंने तुम्हें अखबार पर धाक बिठानी, बल्कि बेशक किसके अंदर अल्लाह ताला के इल्म की का पता चलता है कि अल्लाह ताला का कैसा इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लेवल की बात की है ताकि उस तरह से हमें बातें समझ में आए। तो ये एक मिसाल कुराने पाक में मकड़ी की भी आई, मक्खी की भी आई, जब उन्होंने इस चीजों के ऊपर मजाक करना शुरू कर दिया कि ये कैसी अल्लाह की किताब है, इनकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हक को बयान करने में अल्लाह नहीं शर्माता। इसका मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की इस सुन्नत से क्या हमें सबक सीखना चाहिए कि जब हक बात हो तो हमने शर्माना नहीं है, ठीक है। जब कोई ऐसी बात करनी हो जो वाकई सच्ची बात है, जो सही बात है, तो उसमें झिझकना नहीं है, ठीक है। और ये उनको ये था कि ये छोटी सी मखलूक की बातें क्या हो, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चाहे वो कोई मच्छर की बात हो, फमा फौकहा, या उससे ऊपर की किसी चीज की, मच्छर भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने अगर उसकी मिसाल दे दी तो कोई ऐसी नहीं है बात के ये कोई इतनी छोटी चीज की मिसाल उसकी तो ये शान के खिलाफ है, नहीं, छोटी मिसालें भी अल्लाह ताला दे सकता है क्योंकि हमें समझाना है ना बात, मकसद देखे ना क्या है, हमें समझाना है। तो मच्छर वैसे भी अल्लाह ताला की कोई हकीर मखलूक नहीं, आप देखें ये मच्छर ही है जिसे नमरूद की मौत हुई आके हुई थी, ये मच्छर ही है जिसे मलेरिया होता है, डेंगी होता है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां पैदा होती, तो कोई भी अल्लाह की मखलूक हकीर नहीं है, बल्कि कुराने पाक में कहा गया कि तुम सारे जमा होके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी तुम्हारे से कुछ छीन के तुम्हारे बुतों से कुछ ले जाए तो तुम्हारे बुत उसको वापस नहीं ला सकते, यानी मक्खी के आगे भी तुम आजिज हो जाते हो, मक्खी को मारना चाहें देखें वो आपको कैसे डॉज करती है। तो अल्लाह ताला की ये मखलूकात हैं, मकड़ी देखें इसकी भी मिसाल अल्लाह ने दी है। तो इसमें इस चीज को सोचना कि क्यों ऐसी मिसालें दी हैं, क्यों ये कहा गया है, ये इतराजात करना ये दुरुस्त नहीं है। और आगे रवैये भी आएंगे इंशाल्लाह हम देखते हैं। पहले आप ये देखें कि फमा फौकहा का क्या मतलब है, जो इससे ऊपर है, एक तो लिटरल मीनिंग ले ले जो मच्छर से ऊपर है, मच्छर के ऊपर क्या है, आज साइंस हमें बताती है कि मच्छर के ऊपर भी ऑन टॉप ऑफ इट भी एक मखलूक रहती है, मच्छर की जूं समझ ले, मच्छर के ऊपर भी एक कितनी टाइनी नो मखलूक होगी। मच्छर खुद इतना मतलब एक मामूली सा, एक छोटा सा, बिल्कुल कितना छोटा, बल्कि कभी पता भी नहीं चलता मच्छर का ये किधर घूम रहा है, उनकी आवाजों से झूं झूं से पता चलता है मच्छर है, और मारना चाहे तो कितना मुश्किल होता है, कितना छोटा है वो एक कीड़ा, और उसके ऊपर एक मखलूक होना। तो अल्लाह ताला उससे भी नहीं शर्माता कि उसके ऊपर कोई मखलूक है, उसकी वो मिसाल दे दे। हदीस में भी आता है ना कि अगर दुनिया की कदर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के भी पार के बराबर भी होती, मच्छर वो पार देखो सोचो कितना छोटा होगा, मच्छर इतना छोटा उसका पार, तो इतनी सी भी अगर अल्लाह के नजदीक वैल्यू होती इस दुनिया की, तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। लेकिन चूंकि अल्लाह के यहाँ इतनी भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ काफरों को भी। फिर दूसरी मतलब इसका क्या, फौकाहा का यानी जो इससे ऊपर है, यानी इससे ऊपर चीजें, मच्छर से ऊपर चीजें क्या मैंने आपको बताया, मक्खी भी है मच्छर से ऊपर, मकड़ी भी है, तो और भी हैं जो कीड़े वगैरह हों और परिंदे हैं उनकी मिसाल देना, ये कोई ऐसी अल्लाह ताला के नजदीक नहीं है बात के जिसमें वो कोई हया करें। और फिर इससे ये भी फौकहा से मतलब है कि जो जो इससे भी आगे हो, यानी मच्छर तो क्या, जो मच्छर से भी ज्यादा हकीर या छोटी चीज हो, उससे भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट चीज हो, उसकी भी मिसाल देने से अल्लाह नहीं शर्माता। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं कि जब ऐसी मिसालें दी जाती हैं तो लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो यहाँ पे बताए गए, दो रिएक्शंस बताए गए। एक पक्के ईमान वालों का रिएक्शन क्या होता है, ये कोई ऐसी आयत आ जाए जिसको कोई लोग एतराज कर रहे हैं, तो ईमान वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, वो एतराज कर रहे हैं ये क्या बात हुई, ये क्या मिसाल दे दी, ईमान वालों का रिएक्शन क्या है, और दूसरी तरफ जो इसको नहीं मानते जो काफिर हैं उनका रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शंस देखते हैं, फ अम्मा और व अम्मा के साथ दो रिएक्शंस आए हैं। फ अम्मा लदीन आमन, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं, तो क्या उनका, फयालमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, तो वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं, क्या इल्म रखते हैं, अन्नहुल हक, कि बेशक ये हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरह से। हक का माना क्या होता है, हम हक बात तो कहते रहते हैं, हक का माना होता है सच्ची बात, और नंबर टू हक का माना होता है पर्पसफुल, जो बामकसद हो उसको कहते हैं हक क्या ये, और तीसरा वो भी हक होता है जो हम कहते हैं ये उसका हक है, ये फलां का हक है, ये अल्लाह का हक है, ये भी हक होता है, राइट जो होता है किसी का। तो यानी ये सच्ची बात है, मेरे रब्बीहिम उनके रब की तरफ से, जब वो इन मिसालों को पढ़ते हैं ना तो उनका रवैया क्या होता है, वो भी काफरों की बातों में आगे ये नहीं कहना चाहते, हाँ वाकई पता नहीं अल्लाह ताला ने क्यों, अच्छा अब मैं पूछ के आऊंगी किसी से, देखो ये तो वैसे सही नहीं है, और बस उनके पीछे ही लग जाते हैं, ऐसे हैं ना हमारे मुसलमानों में, भाई सुनी किसी से बात, कहीं पढ़ ली, उल्टे सीधे आजकल फलसफे तो बहुत चलते हैं ना ये नेट पे, आप देखेंगे बहुत कुछ फजूल चीजें लिखी होती हैं। पहले तो बात ये कि उनको ना पढ़ने की जरूरत है ना उनको खोलने की जरूरत है, चलो देखूं तो सही ये क्या कह रहा है, क्या जरूरत है हमें ऐसी चीजों की जो गुमराह कुन चीजें हैं उनको खोलें हम, फिर जब उनके एतराजात सुन लेते हैं फिर उसके बाद खुद भी जहन में शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं, अच्छा हाँ वाकई हमारा दीन ऐसे क्यों कहता है, वाकई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से शादी क्यों की थी जब वो इतनी छोटी थी, हाँ वाकई फिर लौंडियां क्यों रखते थे मुसलमान, ये तो बड़ी अजीब बात है, फिर वाकई ऐसा क्यों था, फिर कहीं ना कहीं से खुद भी कोई वसवास लेके तो बैठे रहते हैं। हालांकि बताया गया जो ईमान वाला होता है ना, वो जब भी कोई चीज दीन की सुनता है पढ़ता है तो वो क्या कहता है, अन्नहुल हक मिर रब्बी, कि वो हक है उनके रब की तरफ से, ये किसकी तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, और ये हक है और वो इसको जानते हैं। यहां पे ये नहीं आया, देखें नोट करें इस बात को, कि हमें सारी समझ आ गई है हमें पता है, वो क्या कहते हैं, हमें बस ये पता है कि ये हक है, और ये हमारे रब की तरफ से है। बस हमें समझ आया है या नहीं आया, इससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये हक है, और किसकी तरफ से? मेरे रब्बी हम उनके रब की तरफ से। इसका मतलब है कि वो इसको ऐसे नहीं लेते जैसे कि हम जैसे मसलन है बच्चे मां बाप को कभी कह देते, ये आपने कैसी बात की है, ये तो बिल्कुल आप उल्टी बातें करती हैं ना, आपने बिल्कुल समझ की बात नहीं की, ऐसे नहीं। या स्टूडेंट टीचर को कह दे कि ये क्या बात हुई, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं। मेरे रब भी है, उनको पता है कि ये बात है किसकी, हमारे रब की है। रब का मतलब समझ आ गया? दो दफा मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, अपनी बताने की जरूरत होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो फिर उसको याद कर लें। कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, वो बार बार आएंगी, उनमें एक रब का लफ्ज भी है। तो रब की तरफ से है, और जब उसको रब मान लिया तो हम क्या है? गुलाम है उसके। तो गुलाम अपने आका की बात कैसे सुनता है? ऐसे सुनता है कि बेतवज्जुही से और कोई रिस्पेक्ट ना हो? नहीं, बहुत तवज्जो से, मोहब्बत से। ये वो वाला गुलाम है जो शदीद मोहब्बत भी करता है, तो वो कैसे सुनेगा? वो गुलाम है, वो ऐसे सुनेगा ये मेरे रब का कलाम है। जैसे हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु हो, अबू जहल के बेटे हैं, लेकिन जब ईमान लाए हैं उसके बाद कुरान पाक जब पढ़ते थे तो रोते थे और कहते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। कितनी इस कलाम की वैल्यू उनके दिल में थी, ये मेरे रब का कलाम है, वो ये सोच के पढ़ते थे। ऐसे ही किसी की बुक नहीं है जैसे कि हम शेल्फ से और बुक्स उठा लें तो एक कुरान भी उठा लिया तो अच्छा चलो पढ़ लिए, हाँ ये इसमें क्यों बात है, वो ऐसे क्यों है, ये नहीं है। ये मेरे रब भी है। अब आप भी कुरान पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं या आपने सफर शुरू किया है, इसमें कई चीजें आएंगी, शायद आपको समझ में ना आए। वैसे तो आपको पता है कुराने पाक में सूरह अनकबूत में आता है कि मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, अल्लाह ने अपने समझने के लिए थोड़ी बयान किया, लोगों के लिए बयान करते हैं, लिन्नास, और इनको अकल वाले ही समझते हैं, अकल वाले इनको समझते हैं। तो जो हमारे असलाफ थे ना, सल्फ सालेहीन थे, जब कुरान की किसी मिसाल को सुनते थे और समझ नहीं आती थी ना तो रोना शुरू कर देते थे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन मिसालों को सिर्फ इल्म वाले समझ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर इल्म नहीं है, उनको इल्म वाले समझ सकते हैं। वहां पे आयत नहीं है, मैंने अकल वाले कहा, नहीं इल्म वाले लिखे हैं, आयत नंबर 43 सूरह अनकबूत, कि इल्म वाले समझ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कोई इल्म नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही। उनको रोना आता था। तो एक तो ये बात है, उसे ये कि हो सकता है कुरान पाक में ऐसे अहकाम आए जो आपके दिल को थोड़ा तंग कर दे, जो आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जो हो सकता है आपकी समझ में ना आए कि इसकी हिकमत क्या है। तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? शुरू में ही बता दिया गया क्या रिएक्शन होना चाहिए, कि ये हक है मेरे रब की तरफ से, बस जो भी है ये सच है, यही ठीक है, यही सही है, यही सीधा रास्ता है, ये हक की हक है, मेरी अकल को छोड़ो, मेरी अकल क्या चीज है, और ये मेरे रब की तरफ से है, ऐसे ही किसी बंदे की बात नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुछ और भी लोग हैं जिनके कुछ और रिएक्शंस होते हैं, अम्मल्लदीना कफरू, तो जो लोग रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो उनका रिएक्शन क्या होता है हक को देख के। कलाम एक ही है, बातें एक ही हैं, आयात एक है, सेम है, वो क्या कहते हैं? फयकूलूना, तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला, अल्लाह ने ये क्या इरादा किया इस मिसाल से। अच्छा वैसे अगर आप देखें तो माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला ये क्वेश्चन के तौर पे भी हो सकता है कि अच्छा ये मिसाल समझ नहीं आई, इसका इसका मतलब क्या है, अल्लाह तआला ने क्या कहना चाहा इसमें। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ रहे होते, उनका सवाल कैसा होता है? एतराज के साथ। आज आप सवालों की बड़ी बात देखेंगे, आगे भी एक सवाल आ रहा है 30 में जो फरिश्तों ने भी किया, उससे आगे भी इबलीस ने भी सवाल किया था अल्लाह ताला से, तो सवाल करने में हर्ज नहीं होता, लेकिन असल बात क्या होती है, सवाल किस तरह से किया जा रहा है, हकारत के साथ, एतराज के साथ, अपने अंदर तकब्बुर और बड़ाई के साथ, या समझने के लिए। ये सब असल सवाल बुरा नहीं होता, असल इंसान का रवैया बुरा होता है। तो उनको देखो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कंडेम किया कि देखो इनका क्या, ये नहीं है बात कि अल्लाह ताला सवाल करने से रोक रहा है, बल्कि बात क्या है कि देखो उनके रवैये दुरुस्त नहीं, कि वो एतराज की सूरत में ये सवाल करें, ये क्या बात हुई, ये कौन सी मिसालें हैं देने वाली, बोला इससे क्या मतलब हो सकता। और आज हमारे मुसलमानों में बाज लोग ऐसे हैं जो इस तरह के एतराजात अपने ही दीन पे करते हैं। ऐसी चीजों को वैसे शेयर नहीं करना चाहिए आगे जिनमें इस किस्म की बातें हो। अगर एक दफा मैंने देखा था किसी का क्लिप के कोई प्रोफेसर था, और वो इसी तरह स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं ना, कि वो जन्नत की बातों का, जन्नत की नियमतों का इतना मजाक कर रहा था, और ऐसे कह रहा था वो कौन सा खुदा है जिसने ऐसे किया है? और ये मुसलमान, ये कोई मैं किसी गैर मुस्लिम की नहीं बात कर, वो कौन सा खुदा है जिसने दूध की नहरें बहाई, भला वहां पे कोई भैंसे हैं, वहां पे कोई ये है, दूध ही चाहिए रह गया था इंसानों को, इतनी हकारत वाली बातें। तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका अल्लाह की आयात को पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि हम इनसे हिदायत लें, उनका मकसद क्या होता है, हम देखें तो सही इसमें है क्या, जरा जरा पता तो चले, बड़ी तारीफें करते, हाँ देखो जरा ये क्या बात लिखी हुई, हाँ देखो जरा ये क्या हुक्म हुआ, लो देखो जरा ये कोई चीजें आज चल सकती हैं, ये कहां की जमाने की बातें की हुई है इसने। जब इस किस्म के रवैये के साथ कोई कुरान करीम की तरफ आएगा तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युदिल्लु बिही कतीरा। अल्लाहु अकबर, आप सोचिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात कहते, युदिल्लु बिही कतीरा। अल्लाह ताला फिर इसी कुरान के साथ उसको भटका देता है, अल्लाह भटका देता है। वो पढ़ क्या रहा है, कुरान अल्लाह की आयतें, और उसके साथ होता क्या है, वो भटक जाता। कुरान से भी कोई भटकता, आप सोच रहे होंगे ऐसा भी कभी होता है कोई कुरान से भटक जाए, जी हाँ कुरान से भी लोग भटकते हैं। जब अंदर गंदा होता है, जब अंदर बीमारी लेकर इंसान कुरान सुनता है और पढ़ता है, और इसके ऊपर मजाक करने के लिए, इसके ऊपर इतराजात करने के लिए, इसमें के देखूं तो सही जरा, एक होता है देखता हूं मैं कि इसमें क्या है, ये है एक ये रवैया के मैं जानना चाहता हूं, और एक है देखूं तो सही, समझ आई, दोनों देखूं मैं, इसी से आपको पता चल गया होगा ना, ये कई इस रवैये के साथ आते हैं और कई उस रवैये के साथ आते। तो जो फिर कहता है ना देखूं कि क्या कहा है अल्लाह ने, वो फिर क्या है, वह यहदी बिही कतीरा, इसी कुरान के साथ वो हिदायत पाते हैं। इसीलिए ये कहने की जरूरत नहीं होती लो बड़े कुरान पढ़ लिए इन्होंने, ये बदले नहीं, ये ऐसे हुआ, बदले ये कैसे, क्योंकि इसी कुरान से युदिल्लु बिही कतीरा भी है। जरूरी नहीं हर कोई कुरान सुन के पढ़ के तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, हिदायत पा जाए, अल्लाह ने तो शुरू में ही बता दिया आपको कि भटक भी जाते हैं लोग, क्योंकि लोगों की नियत के ऊपर डिपेंड करता है वो किस नियत के साथ इस कुरान की तरफ आए। जब मैं इस कुरान को खोल के बैठती हूं तो मैं क्या सोच के बैठती हूं, मैं क्या पढ़ने जा रही, हजरत इकरमा की तरह ये मेरे रब का कलाम है ये सोच के, अच्छा चलो देखते तो हैं, सुना है बड़ी बातें हैं इसके अंदर, बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी सारे बताए तो चलो देखूं तो सही, ना ये रवैया। आपको वही मिलेगा जिस नियत के साथ आप इस कुरान की तरफ आएंगे, सबको वही मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था अपनी नियतों के जायजे लें, क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपको वही देगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर शोशे निकालने के लिए आना चाहते हैं तो कोई शोशे भी मिल जाते हैं लोगों को, मिल जाते हैं। देखें आप इन्हीं में से लोगों ने कहा अल्लाह ने ये क्यों मिसाल दी है, अल्लाह ने ऐसे क्यों कह दिया, और आज भी आप देखते हैं बहुत लोग शोशे निकालते हैं, कभी हूरों के मजाक हो रहे हैं, कभी और चीजों के मजाक हो रहे हैं, कभी जहन्नुम के ऊपर यहीं से लेके लतीफे बनाए जा रहे हैं, कभी एतराजात हो रहे हैं। तो फिर भटकेंगे ना इसी से, उनका पढ़ना ही इसलिए, तो जो जिस नीयत से पढ़ेगा उसको वो मिलेगा। आज फिर दोबारा देखें मैं किस नीयत से पढ़ना चाहती हूँ, किस नीयत से। बहुत सारी नीयतें कर ली, मैं अपने लिए भी हिदायत चाहती हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए भी, अपने घर में भी दीन का इल्म जिंदा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम सारी फैमिली हिदायत पे चले, सिराते मुस्तकीम पाले, मैं अल्लाह के हुक्म जान के उनके ऊपर अमल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे रब ने मेरे साथ क्या बात की है मैं वो जानू, मैं चाहती हूँ कि अमल में मैं दौड़ लगाऊ, मैं चाहती हूँ नेकियों में मैं भागू, मैं चाहती हूँ मैं अल्लाह को राजी कर लू। बहुत सारी नियतें कर ले, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा इस कुरान से। और कोई ये भी चाहेगा मैं चाहती हूँ मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए फिर मैं जाके कहीं जॉब वगैरह कर लू, तो ये भी मिल जाएगा। जिस जो जो चाहेगा ना वो ही मिलेगा इससे। तो आप अपनी चाहते अपनी नियतें बहुत ऊपर बहुत बुलंद रखें, बाकी चीजें तो मिल ही जानी है, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाना है इंशाल्लाह बैठने का, लेकिन जब आप एम्स हाई रखेंगे ना बड़ा कुछ मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी, रहमतें भी मिलेंगी, अल्लाह की रजा भी मिलेगी, जन्नत का आसान रास्ता भी मिल जाएगा, जन्नत के रास्ते खुलते चले जाएंगे, नेकियों के रास्ते खुलेंगे। तो क्या चाहते हैं हम, सबका आपका होमवर्क है, इसमें अमल की बात है। अमल की बात हमारे लिए क्या है, हम देखें हम किस नियत के साथ कुरान को खोलते हैं। जब हम क्लास में बैठते हैं सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारी क्या नियत होती है? तो आयतों में अमल की बातें जरूर ढूंढा करें, बाज मैं आपको बताऊंगी बाज आपने खुद तलाश करनी है, वरना अगर अमल की बात कोई नहीं है हमारे लिए तो फिर सिर्फ पढ़ना और रटे लगाना ही रह जाता। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता किसी को ये मिसालें मगर फासिकीन को, यानी सिर्फ फासिकों को गुमराह करती है, क्योंकि इंसान डर जाता है ना अल्लाह कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं इस कुरान को पढ़ के। तो अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, सिर्फ फासिक गुमराह होते हैं, उसी और को ये गुमराह नहीं करता। बी ही, अच्छा ही की जमीर किस तरह जा रही है, युदिल्लु बी ही कतीरा व यहदी बी ही कतीरा, बी ही क्या है, साथ इसके, इसके किसके, इस कुरान के, नंबर टू इन मिसालों के, ठीक है, इन मिसालों के जरिए कोई और नहीं गुमराह होता मगर फासिक, या इन मिसालों से बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे हिदायत भी पा जाते हैं। कैसे हिदायत पाई उन्होंने, या अलमूना अन्नहुल हक मिन रब्बिहिम, वो जानते हैं यह हक है हमारे रब की तरफ, यह अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है, ठीक है, और कुरान से, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया कुरान से कैसे हिदायत पाते हैं कैसे गुमराह होते हैं। तो फासिक कौन होता है, नाफरमान को फासिक कहते हैं, जो दीन के दायरे से निकल जाए, इताअत से निकल जाए वो फासिक है, हदों को तोड़ता है वो फासिक है,